आज है 31 जनवरी दिन शुक्रवार। बीबीसी हिंदी रेडियो का अंतिम अंक लेकर हाजिर हूं मैं राजेश जोशी, नमस्कार। दिल्ली बलात्कार कांड के अभियुक्तों को फांसी की सजा फिर टली, निर्भया की मां ने प्रतिवाद किया।
पहले हमारे बच्चे के साथ क्राइम हुआ था, बार बार हमारे को उन मुजरिमों के सामने सरकार झुका रही है, कोर्ट झुका रहा है।
जामिया यूनिवर्सिटी में गोली चलाने वाले नाबालिग के थैले से हिंदुत्ववादी सामग्री बरामद।
मैं पुलिस वाला होता तो मैं कम से कम टांग में गोली मार देता, अगर वो पिस्टल लहरा रहा है तो चाहे वो हमारा स्टूडेंट है।
और आज आखिरी बार कुछ पुरानी यादें।
जी, पहले सुनिए वो आवाज जो अब केवल रिकॉर्डिंग्स में ही सुनी जा सकेगी।
लेकिन पहले हमेशा की तरह विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। निर्भया बलात्कार मामले में चारों दोषियों को 1 फरवरी को होने वाली फांसी टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगा दी है। कोर्ट में 1 फरवरी को फांसी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। दोषी अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि अभी दोषियों के पास अपने बचाव के सभी विकल्प मौजूद हैं और एक दोषी की दया याचिका लंबित है। अभियोजन पक्ष ने इस फैसले पर दुख जाहिर किया है। आज संसद के बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में साल 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर 6 से 6.5% रहने की उम्मीद लगाई गई। साथ ही सरकार ने कहा कि वह सुधारों पर तेजी से काम करेगी। साथ ही सर्वेक्षण में जीएसटी संग्रह में 4.1% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। सर्वेक्षण में सरकार ने माना कि साल 2019 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन साल रहा, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और नए नागरिकता कानून को लागू करने को बड़ा फैसला बताया। वहीं राष्ट्रपति के भाषण में नागरिकता कानून का जिक्र होने पर विपक्षी नेताओं ने संसद में हंगामा और नारेबाजी की। राष्ट्रपति ने इस दौरान चंद्रयान 3, नमामि गंगे मिशन, करतारपुर कॉरिडोर और बोडो समझौते सहित कई विषयों का जिक्र किया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ अपने 47 साल पुराने सदस्य ब्रिटेन से अलग होने की तैयारियां कर रहा है। आज रात ब्रिटेन यूरोपीय संघ से औपचारिक तौर पर अलग हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रतिनिधि के सभी कार्यालयों और ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के सभी संस्थानों से संघ का झंडा हटा दिया जाएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद व संसद में उनके समकक्षों ने इसे बेहद भावुक दिन बताया। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों के नाम एक खुला खत लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वो इस नए रिश्ते को सफल बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन उर्जुला फॉन डेर लायन ने बीबीसी से कहा कि हर पक्ष नए संबंधों पर बातचीत में अपने हितों के लिए संघर्ष करेगा।
Negotiations will be fair. But of course, each side will fight for their interests and,
बातचीत निष्पक्ष होगी, लेकिन हर पक्ष अपने हितों के लिए लड़ाई करेगा। इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा एकल बाजार है। ब्रिटेन एकल बाजार के जितना करीब होना चाहता है, उतना ही उसे एकल बाजार के नियमों का सम्मान करना होगा। ये थे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के शब्द। दुनिया भर में देश कोरोना वायरस से बचाव के लिए अलग अलग कदम उठा रहे हैं। मंगोलिया 1 महीने तक चीन के साथ लगी अपनी सीमा बंद कर सकता है। 1 फरवरी से सिंगापुर चीनी नागरिकों और पिछले 2 हफ्तों में चीन की यात्रा करने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देगा। इटली ने वायरस के खतरे को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहीं चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के प्रवक्ता मी फंग ने कहा है कि चीन इस वायरस पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। चीन की सरकार कोरोना वायरस के कारण होने वाले निमोनिया की रोकथाम और नियंत्रण पर पूरा जोर दे रही है। हमारे पास इस महामारी को हराने के लिए पूरा आत्मविश्वास और क्षमता है। ये थे चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के प्रवक्ता के शब्द। बेल्जियम की एक कोर्ट ने 3 डॉक्टरों को इच्छा मृत्यु के एक मामले में बरी कर दिया है। अभियुक्त डॉक्टरों ने एक महिला की इच्छा मृत्यु में मदद की थी। उन पर गैर कानूनी तरीके से जहर देने का आरोप लगा था। बेल्जियम में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर, और आखिरी बार आपके साथ हूं मैं राजेश जोशी। आप सोपोर में हों या सांगली में, या सुदूर पूर्व अरुणाचल प्रदेश के किसी एकांत पहाड़ी गांव में, चाहे आप उत्तराखंड के चमोली में हों या बिहार झारखंड के किसी दुर्गम इलाके में सुन रहे हों, या बस्तर के अबूझमाण में, या फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में, आवाज़ का एक बारीक तार हम सबको आपस में जोड़े हुए है। आज इस बारीक तार की झनकार हम और आप आखिरी बार महसूस करेंगे। आज जब बीबीसी हिंदी रेडियो का 80 साल पुराना सफ़र संपन्न हो रहा है, अपने आसपास नज़र दौड़ाएं। नागरिकता कानून के खिलाफ नौजवान, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर उतरे हैं। उन्हें आशंका है कि भारतीय संविधान की बुनियाद हिलाई जा रही है। दूसरी तरफ सरकार एक नए भारत, न्यू इंडिया के सपने को साकार करने का आश्वासन दे रही है। ये कश्मकश का दौर है और इस दौर में हम सबकी भूमिकाएं हैं, उनकी भी जो खामोश हैं, उनकी भी जो बोल रहे हैं, उनकी भी जो नीतियां बना रहे हैं, और उनकी भी जो इन नीतियों को अनैतिक मान रहे हैं। 2012 में दिल्ली में जिस युवती का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, आज फिर से उसकी माँ को अफसोस है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा टल गई है। आज यही हमारी पहली खबर भी है और जानकारी देने के लिए पंकज प्रियदर्शी स्टूडियो में मौजूद हैं। पंकज,
16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को दोषी ठहराया गया था। इन चारों को 1 फरवरी को फांसी दी जानी थी, लेकिन दिल्ली की अदालत के एक जज धर्मेंद्र राणा ने वकीलों के तर्क सुने। 5 बजे के बाद जज अपने चैम्बर से बाहर आए और उन्हें एक लाइन का फैसला सुनाया, फांसी अगले आदेश तक रोकी जाती है। अपने लिखित आदेश में जज ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायत का समाधान मांगना किसी भी सभ्य समाज की विशेषता होती है। जज ने कहा कि कोई भी दोषी, भले ही उसे मौत की सजा क्यों न मिली हो, उसे कानूनी विकल्प पूरा न करने देना इस देश का कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता। अदालत के फैसले को सुनने के बाद निर्भया की मां आशा देवी बहुत भावुक दिखी।
मुझे ये तकलीफ नहीं कि पोस्टपोन हो गए, मुझे ये तकलीफ है कि उन चारों के वकील एपी सिंह ने मुझे चैलेंज करके कोर्ट में गया है कि ये फांसी अनंत तक काल तक नहीं होगी, तो ये कोर्ट सुन ले, दिल्ली सरकार सुन ले, केंद्र सरकार सुन ले कि उसने कहा के गया है कि ये फांसी अनंत काल के लिए टल गई। तो कहीं ना कहीं सरकार हमें, 7 साल पहले हमारे बच्चे के साथ क्राइम हुआ था, बार बार हमारे को उन मुजरिमों के सामने सरकार झुका रही है, कोर्ट झुका रहा है।
दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें दुख है कि निर्भया के अपराधी कानून के दांव पेच ढूंढकर फांसी को टाल रहे हैं। हमारे कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों में फांसी 6 महीने के अंदर हो। जी राजेश जी,
पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया की सड़कों पर तमंचा लहराकर फायर करने वाले नाबालिग नौजवान का एक थैला बरामद हुआ है। इस बीच पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि लड़के के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी आज फिर मौके पर गए और वहां से भेजी उन्होंने ये रिपोर्ट।
दिल्ली के जामा मिलिया इस्लामिया में बृहस्पतिवार को प्रदर्शन के दौरान नाबालिग युवक द्वारा गोली चलाए जाने की घटना के बाद दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी है। संस्थान के छात्र और प्रशासन का आरोप है कि पूरे मामले में पुलिस ने उस तरह की फुर्ती और जिम्मेदारी नहीं निभाई जिस तरह उसने आंदोलन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रदर्शनकारी छात्रों के सामने दिखाई थी।
पुलिस का भूमिका पे इसलिए सवाल उठाना जरूरी है कि पुलिस संविधान पे शपथ लेती है कि हम नागरिकों का सुरक्षा करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो फोटोज मीडिया वालों ने खींचा है और जिसे वीडियोज वायरल हुए हैं, पुलिस पीछे खड़ा होकर हाथ पे हाथ डाले ऐसे ही देख रही है कि कैसे फायरिंग सामने से हो रही है।
छात्रों का कहना है कि पुलिस पूरे गोली चालन की घटना के दौरान मूक दर्शक बनी रही और उसने कुछ नहीं किया।
मैं खुद वहां था, आगे उस पे था, फिर उसके बाद वहां देखते हैं एक लड़का आता है, उसके बाद कट्टा लेके आता है, तमंचा लेकर, उसके उसने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, पिस्तौल हटाता है और उसके बाद पुलिस जस्ट यहीं पीछे ही खड़ी है। हम लोग कह रहे हैं कि वो कट्टा लिया हुआ, पिस्तौल लिया हुआ, पुलिस का कोई नहीं होता, पुलिस ऐसे मार्गदर्शक बनी रहती है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जय श्री राम, दे दी आज़ादी, हमारा एक साथी बढ़ता है, उसको यहाँ पर गोली लगती है, उसके बाद पुलिस में हरकत आती है, उसके बाद बढ़ती है।
वहीं जामा मिलिया इस्लामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान को भी लगता है कि बंदूकधारी को दबोचने के लिए पुलिस को ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था।
जब वो पुलिस के नजदीक ही लगभग पहुंच चुका था तब उसने गोली चलाई, तब पुलिस ने एक बार एकदम उसे दबोचा है। मैं पुलिस वाला होता तो मैं कम से कम टांग में गोली मार देता। अगर वो पिस्टल लहरा रहा है तो चाहे वो हमारा स्टूडेंट है, अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है या बाहर वाला था तो मैं कम से कम उसको गोली तो मार सकता था।
मगर दिल्ली पुलिस के उपायुक्त चिन्मय बिस्वल पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं,
वीडियो को जरा गौर से देखिए, वो बंदा कहां से आ रहा था। हमारे पुलिस ऑफिसर जिस पॉइंट पे अभी आप खड़े हैं, इसी होली फैमिली हॉस्पिटल के पास खड़े थे, जैसे हमें पता चला कि वो यूनिवर्सिटी एरिया से वो मार्च शुरू कर दिया है जिस मार्च की उनकी परमिशन नहीं थी, तो हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ रहे थे उनसे बातचीत करने के लिए, तभी दिखाई पड़ता है, वीडियो में है ये बात, जरा जोर से गौर से जरा देखेंगे, जांच करेंगे। एक व्यक्ति इनकी प्रदर्शनकारियों की भीड़ की तरफ से ही निकल के आता हुआ दिखता है, जो इनके आगे आता है, आगे कुछ लहराता हुआ आता है, फिर एक आवाज आती है और हमारे पुलिस ऑफिसर वहीं पे जो अपोजिट साइड से जो चल के आ रहे थे वो तुरंत दौड़ के उसको काबू करते, ये बात भी वीडियो में है।
अब जामा मिलिया इस्लामिया का प्रशासन नाबालिग युवक का बरामद हुआ बैग पुलिस को सौंप चुका है, मगर इससे पहले उसने बैग में मौजूदा सामान की एक सूची भी बना ली है ताकि पता चल सके कि इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कल 23 बच्चों को बंधक बनाने वाले शख्स को पुलिस ने गोली मारकर बच्चों को छुड़ा तो लिया था, लेकिन गांव के लोग अब भी दहशत में हैं। पुलिस कार्रवाई में बंधक बनाने वाले व्यक्ति की पत्नी की भी मौत हो गई है। हमारे संवाददाता समीर आत्मज मिश्र इस वक्त उसी गांव में हैं और टेलीफोन के जरिए हमारे संपर्क में हैं। समीर, एक मिनट में बता पाएंगे आप कि वहां क्या हो रहा है? समीर से हमारा संपर्क लगता है कि या तो हो नहीं पा रहा है या हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा उलट फेर करके आज बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्रिकेट के मैदान से लेते हैं खबरें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मैच में सुपर ओवर के बाद भारतीय टीम ने मैच अपने नाम कर लिया। आपके जाने पहचाने आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद हैं, बताइए क्या क्या हुआ था आज?
जी जोशी जी, अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो भारत इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए, जवाब में भारत ने केएल राहुल के 10 रन की मदद से जीत हासिल की। हालांकि जीत का चौका केएल राहुल के आउट होने के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने लगाया और इसके साथ ही 5 मैचों की इस सीरीज में भारत ने 4-0 की एक तरफा बढ़त भी ले ली। विराट ने चौका लगाने से पहले 2 रन भी बनाए। वैसे निर्धारित 20 ओवर में दोनों टीमों ने समान रूप से 165-165 रन बनाए और मैच टाई हो गया। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने मनीष पांडे के नाबाद 50, केएल राहुल के 39 और शार्दुल ठाकुर के 20 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 165 रन बनाए। न्यूजीलैंड के इशोडी ने 26 रन देकर 3 और हामिश बेनेट ने 41 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 165 रन बना सकी। न्यूजीलैंड के कोनिर ब्रो ने 64 और टीम सेफर्ट ने 57 रन बनाए। भारत के शार्दुल ठाकुर ने 33 रन देकर 2 विकेट। ऐसे अगर इस सीरीज़ की बात की जाए जोशी जी, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो अपने ही मैदान में उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस तरह की उम्मीद थी। और अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो केएल राहुल ने इस तरह का प्रदर्शन किया है कि जिस तरह की उनसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले तो एक विकेटकीपर और उसके बाद बल्लेबाज के तौर पर अपनी धाक जमाई।
देखिए बीबीसी हिंदी रेडियो पर आदेश कुमार गुप्त की आवाज़ आप लोगों ने आखिरी बार सुनी, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आगे भी आप सुनते रहेंगे ऐसी उम्मीद है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन भर का अंतिम अंक। जैसे जैसे घड़ी की सुई एक एक सेकंड करके आगे का सफर तय कर रही है, बीबीसी हिंदी रेडियो भी उसी रफ्तार से इतिहास के पन्नों में समा जाने के लिए अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। घड़ी की सुई को रोकना मुमकिन है, पर अफसोस इससे समय को नहीं रोका जा सकता। बीबीसी हिंदी रेडियो बीते 80 वर्षों के दौरान इतिहास की हर छोटी बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है और सुनने वालों की कम से कम 4 पीढ़ियां इसकी गवाह रही हैं। आखिरी बार अलविदा करने से पहले आइए सुनते हैं कि पिछले 8 दशकों में बीबीसी हिंदी कैसे कैसे उतार चढ़ावों से होकर गुजरा। रेहान फजल की पेशकश।
जिंदगी आवाज ही आवाज है, और सिर्फ इंसानों की ही आवाज नहीं बल्कि हर उस चीज की आवाज जो इस दुनिया में है। नदी, सागर, आंधी, तूफान, पशु पक्षी, आवाजें खुशी की, आवाजें गम की, आवाजें खौफ की, और मुकम्मल जिंदगी को आवाजों के जरिए पेश करने का नाम ही प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग। जब ब्रॉडकास्टिंग का जिक्र होता है तो अपने मुंह से कहना शायद अशिष्टता लगे, लेकिन बीबीसी का नाम दुनिया के चुनिंदा समाचार माध्यमों में लिया जाता है। इस सफर की शुरुआत हुई थी 11 मई 1940 को, जब दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले हिंदुस्तानी जवानों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके जरिए वो अपने घरों को संदेश प्रसारित करते थे।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लंदन से एमईएफ और पाइल फोर्स के फौजी बहादुरों की खिदमत में आदाब।
आज मौका भी है और दस्तूर भी कि आपके सामने बीबीसी हिंदी के इतिहास के पुराने पन्ने खोले जाएं। लेकिन बीबीसी हिंदी का अलग से क्या इतिहास होगा, वो तो स्वयं इतिहास का आईना है। अभी हिंदी प्रसारण को शुरू हुए कुछ ही महीने हुए थे कि ब्रॉडकास्टिंग हाउस पर जर्मन विमानों ने हमला किया। उस समय ब्रूस बेलरिज अंग्रेजी में समाचार पढ़ रहे थे।
This is the BBC Home and Forces program. Here is the news and this is Bruce Belfridge reading it. Tonight's talk after this bulletin will be by Lord Lloyd, the Colonial Secretary.
इस हमले में 7 लोग मारे गए। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए कहा,
Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
अभी भारत को आजाद हुए मात्र 5 महीने हुए थे कि वज्रपात हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार दी। बीबीसी संवाददाता रॉबर्ट स्टिमसन वहां मौजूद थे।
At 5:03 Indian time, Mr. Gandhi came out of Birla House, and because he was a little late for evening prayers, he stepped more briskly than at any time.
जवाहरलाल नेहरू ने रुंधे हुए गले से महात्मा गांधी के निधन की सूचना पूरे राष्ट्र को दी।
The light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more.
भारत के विभाजन के बाद बीबीसी की हिंदुस्तानी सर्विस का भी विभाजन हुआ। जनवरी 1949 में इंडियन सेक्शन ने पहली बार हिंदी में प्रसारण शुरू किए, जिसका उद्घाटन किया ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त और बाद में रक्षा मंत्री बने कृष्ण मेनन ने।
I am asked by the British Broadcasting Corporation to say a few words by way of introduction to the new service to India.
बीबीसी हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान। ये शायद पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर सीमा पर हो रही हार को सरेआम स्वीकार किया।
आज और कल की खबरें आई थी, वहाँ पूर्वी सीमा प्रांत में वालोंग एक जगह है, उसको हमारी फौज को छोड़ना पड़ा। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ।
3 वर्षों बाद 1965 में भारत को एक बार फिर युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाकिस्तानी जनता को संबोधित करते हुए युद्ध का ऐलान किया।
जंग शुरू हो चुकी है, दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्ला फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो, आमीन। पाकिस्तान
10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसी रात ताशकंद में ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर उस समय ताशकंद में मौजूद थे।
इतना बड़ा कमरा, उसमें इतना बड़ा पलंग, उसमें एक छोटा सा
نکتے کی طرح آدمی سمٹا ہوا. تو میں نے ہمارے ساتھ فوٹوگرافر کیا ہوا تھا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کہ بھائی ان کو ٹھیک کیا, ان کی باڈی کو وہاں سے پھول لیے, جھنڈا لیا, ان پہ کر دیا کیونکہ اب لوگ آئیں گے. تو آئے بھی, جیسے ایوب خان جو تھے, جنرل ایوب خان اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, تو وہ آئے بھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے مجھ کی طرف مخاطب جو ہندوستان اور پاکستان کو نزدیک لا سکتا تھا. بدقسمتی
1971 کے بھارت پاکستان یدھ کو جس طرح سے بی بی سی ہندی نے کور کیا اس کی ہر جگہ تعریف ہوئی. 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب نے ڈھاکہ کے ریس کورس میدان پر پاکستان کے شاسن کے خلاف گرجنا
کی. আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো.
বাংলাদেশ কি আজাদি পর রত্নাকর ভারতীয় নে হাস কার্যক্রম পেশ কিয়া.
বাংলাদেশ বিশাল নদীয় কা দলদলো কা প্রসিদ্ধ মধুবন কা দেশ, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র কা দেশ, সমুদ্র আর তুফানো কা দেশ, مہان کرانتکاریوں اور مہان کلاکاروں کا دیش. اب ایک آزاد دیش ہے جس کی رودھی ہوا اب اچانک مست تھرکن کے ساتھ بہنے لگی ہے اور جو مچھوؤں کی سور لہریوں کو دور دور تک آتما کے چھپے کونوں تک لے جا رہی ہے.
ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے والے لیفٹیننٹ جنرل اے اے کے نیازی نے بی بی سی ہندی سے بات کرتے ہوئے ہار کے لیے جنرل یحییٰ خان کو ذمہ دار ٹھہرایا.
اللہ غالب کرے یحییٰ کو اور ویسٹ پاکستان والوں کو کہ جیتی باجی ہار دی, کہ شکست مغرب میں تھی اور لعنت ہم پر پڑی.
یدھ کے بعد اندرا گاندھی کی لوکپریتا گھٹنے لگی. الہ آباد ہائی کورٹ نے چناؤ میں انیمتتاؤں کا دوشی مانتے ہوئے ان کی لوک سبھا کی سدسیتا سماپت کر دی. 26 جون 1975 کو تمام لوک تانترک مولیوں کو دھتا بتاتے ہوئے اندرا گاندھی نے آپات کال کی گھوشنا کی.
بھائیوں اور بہنوں, راشٹرپتی جی نے آپات کال کی گھوشنا کی ہے, اس سے آتنکت ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے.
وپکش کے نیتاؤں پر میڈیا سے بات کرنے پر پرتیبند کے باوجود بیماری کے کارن جیل سے رہا کیے گئے جے پرکاش نارائن نے سب سے پہلے بی بی سی سے بات کی.
اندرا جی کے ہاتھوں میں سکتہ ہے اور کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ تانہ شاہی کا سکتہ کی سکتہ نہیں ہے. ایمرجنسی قائم ہے, ایمرجنسی میں سارے ان کے ادھیکار پارلیمنٹ ایک برس کے لیے اس کے وزیر بڑھائی گئی.
بھارت کا سرکاری میڈیا ایک طرح سے سرکار کا لاؤڈ سپیکر بن کر رہ گیا تھا. پریس کی سینسرشپ نے بھارت میں بی بی سی کی اپیوگتا اور بڑھا دی تھی. سمبھوتہ بی بی سی ہندی کا یہ سورنم کال تھا. بعد میں بھارت کے پردھان منتری بنے چندر شیکھر انی وپکشی نیتاؤں کی طرح جیل میں بند تھے.
ہمارے ایک متر نے چھوٹے سے ٹرانزسٹر کو بھیج دیا تھا جیل میں کسی طرح کسی کے ذریعے, تو اس پر میں اور کوئی کام ہی نہیں گیا, تو پڑھتا تھا یا ریڈیو سنتا تھا. قیدیوں میں بھی یہ دھارنا تھی کہ اپنا ریڈیو سے اپنا ہی آکاش وانی سننے کا کوئی لابھ نہیں, بی بی سی سنیے وہ کچھ صحیح خبر دے گا. میں نت پرت ایک نہیں دو تین بلیٹنیں بی بی سی کی سنتا رہتا تھا اور اس میں بی بی سی نے ایک بہت اچھا رول ادا کیا.
آپریشن بلو سٹار, بھارتی سینا نے سورن مندر میں گھس کر سکھ پرتھکتا وادیوں کو نکالنے کی مہم چلائی, لیکن اس کی بہت بڑی راجنیتک قیمت تتکالین سرکار کو چکانی پڑی. اکال تخت میں پرتھکتا وادیوں کو نینترن میں لانے کے لیے ٹینکوں کا استعمال کیا گیا. کیا یہ باقاعدہ یوجنا بنا کر کیا گیا؟ بی بی سی نے یہی سوال رکھا آپریشن بلو سٹار کے کمانڈر میجر جنرل بلبل برار سے.
بالکل شروع میں نہیں تھا, یہ تو ایک دم بلائے گئے جب دیکھا کہ اکال تخت کے نزدیک بھی نہیں آدمی جا سکتا ہے, سپاہی نہیں جا سکتا ہے, تو ہم لوگ کیسے پہنچیں گے اکال تخت میں, کیونکہ صبح ہو جائے گی اور جیسے میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ صبح ہو گئی تو سینکڑوں میں لوگ آ جائیں گے چاروں طرف سے اور فوج کے گھیر اپ کر دیں گے. تو ٹینکوں کا استعمال صرف اس لیے کرنا تھا کہ اس کی جو لائٹ ہے, زینون بلب ہے یا ہیلوجن بلب ہے, वो बहुत पावरफुल बल्ब है और वो लाइट ऑन करे ताकि अकाल तख्त में जो लोग हैं उनकी आंखों में वो लाइट जाए और वो चंद एक सेकंड और मिनट के लिए देख ना पाए और उस टाइम में वो निशान ना ले सके और हमारे लोग नजदीक पहुंच जाए।
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अपने अंगरक्षकों ने उन पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। कम से कम भारत के लोगों को उसकी सबसे पहली खबर बीबीसी ने ही दी। उस दिन बीबीसी हिंदी के आजकल कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह हुई।
आजकल नमस्कार, ओंकारनाथ श्रीवास्तव की ओर से। क्या कहूं, लीजिए पहले सुनिए वो आवाज जो अब केवल रिकॉर्डिंग्स में ही सुनी जा सकेगी।
I'm not at all interested either in a claim or a place in history. I'm interested in serving the people and I think I've given of my best.
श्रीमती इंदिरा गांधी, नाम के आगे सुर्गिया लगाते जबान कांपने लगती है, मगर कठोर सत्य से कौन मुंह चुरा सकता है।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे हुए। 1991 में जब राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, श्री पेरम्बदूर में तमिल प्रतिकतावादियों ने आत्मघाती बम के जरिए उनकी हत्या कर दी।
मद्रास शहर से कुछ 50 मील की दूरी पर श्री पेरम्बदूर नामक गांव में तकरीबन 10:10 पर पिछले सालों के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या हुई। वे अपनी गाड़ी से उतर के मंच की तरफ बढ़ रहे थे और उसी दरमियान एक भयानक सब विस्फोट हुआ जिससे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए।
1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। छह दिसंबर 1992 को मार्क टली अयोध्या में मौजूद थे। वहां से उन्होंने ये डिस्पैच भेजा था।
Hindu holy men waited patiently for the ceremony to start. Most of the vast crowd were kept well away from the ground in front of the disputed mosque.
2002 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ और मिनटों में अमेरिका की समृद्धता का प्रतीक समझे जाने वाली ये दोनों इमारतें जमींदोज हो गईं।
The whole building has collapsed.
The building has collapsed.
That's the southern tower you're talking
exactly,
about.
Exactly, the second building that we witnessed the airplane.
बीबीसी हिंदी ने बात की इस हमले में मारे गए राजीव खंडेलवाल की पत्नी श्वेता खंडेलवाल से।
जो गुजरी थी वो यही है कि अपने हस्बैंड को खो देना सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया में। 15 दिन तक तो मुझे ये लगता ही नहीं था कि वो वापस नहीं आएंगे। मैं तो हर दिन उनका इंतजार करती थी। फिर बाद में जब मैं WTC साइट को देखने गई उसके बाद ये विश्वास हुआ कि वो आ ही नहीं सकते थे। ऐसे इतना ज़्यादा वहाँ पे हुआ है, इतना बड़ा पहाड़ जैसा खड़ा हुआ था, किसी चीज़ का लग ही नहीं सकता था कि कोई वहाँ से जिंदा वापस भी आ सकते हैं।
यादें और पुरानी बातों का रेला है जो काफिला दर काफिला उमड़ा चला आता है। कहाँ तक याद किया जाए और कहाँ तक जिक्र किया जाए। कुछ हवा तेज थी, खुली थी किताब, एक पिछला वर्क पलट आया। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। उर्दू के मशहूर शायर कृष्ण बिहारी नूर ने पता नहीं किस कैफियत में ये शेर कहा, पर इस लम्हे हम सबको लग रहा है जैसे गजल सुनाकर हम सब अकेले खड़े रह गए हैं और बाकी सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए हों। मगर दरअसल इस अकेलेपन में हम सब साथ हैं। भले ही रेडियो पर अब हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी और नहीं आपकी मीठी झिड़कियाँ, पर आवाज़ें कभी गुम नहीं होती, वो अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। फिलहाल दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। शायद कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, पुरानी आदतें ऐसे नहीं छूटती। बहरहाल रेडियो पर नहीं सही, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर तो होगी मुलाकात। इसी उम्मीद के साथ सभी साथी जो मेरे साथ स्टूडियो में आसपास खड़े हो गए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ से मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूं। और बीबीसी हिंदी के साथी, मैं देख रहा हूं कुछ आंखों में आंसू हैं, मैं देख रहा हूँ सब चेहरे उदास हैं, लेकिन उदासी का कोई सबब नहीं है। सब अपने श्रोताओं से जिन्होंने 80 साल तक हमारा साथ दिया, उनसे एक साथ एक आवाज़ में विदा लें। रूपा झा भी यहाँ हैं, मुकेश शर्मा यहाँ हैं, राजेश प्रियदर्शी शायद नहीं है, धन्यवाद।
अलविदा।